नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। प्रदेश में नगर निकाय चुनाव के लिए कल दोपहर तक प्रत्याशियों द्वारा नाम वापस लिए जा सकते हैं। इसके बाद ही प्रत्याशियों की अंतिम संख्या और सूची स्पष्ट होगी। 4 सितंबर को राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। मतदान 9 और 11 सितंबर को होगा। वोटों की गिनती 14 सितंबर को होगी। इस बीच निकाय चुनाव प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए विभिन्न तैयारियां की जा रही हैं। ईवीएम के आवंटन और चुनाव प्रचार के लिए वाहनों की अनुमति की प्रक्रिया जारी है। साथ ही चुनावी विज्ञापन और पेड न्यूज को लेकर जिला स्तरीय मॉनिटरिंग कमेटी बनाई जा रही है। इसके अलावा प्रदेश भर में निकाय चुनाव में शत प्रतिशत मतदान सुनिश्चित करने के लिए स्वीप गतिविधियों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। भरतपुर में मतदाता संवाद और दिव्यांग वाहन रैली का आयोजन किया गया। रैली में बड़ी संख्या में दिव्यांग मतदाताओं ने भाग लिया और लोकतंत्र के महापर्व में सक्रिय भागीदारी निभाने का संदेश दिया। कोटपुतली के गंगा सागर तालाब पर दीपोत्सव के जरिए मतदाता जागरूकता का संदेश दिया गया। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने जोजड़ी, बांडी और लूणी नदियों में प्रदूषण को रोकने के लिए तैयार एक्शन प्लान पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि नदियों के संरक्षण, औद्योगिक गतिविधियों और पर्यावरण सुरक्षा के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है। मुख्य सचिव ने ये निर्देश उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर गठित इंटीग्रेटेड कोऑर्डिनेशन ग्रुप की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिए। बैठक में तीनों नदियों में प्रदूषण की रोकथाम के उपायों और एक्शन प्लान पर चर्चा की गई। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल को इस कार्य के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि मानव और प्रकृति के बीच सामंजस्य तथा सह अस्तित्व ही पर्यावरण संरक्षण का आधार होना चाहिए। उन्होंने ये बात आज नई दिल्ली में बाघ संरक्षण और आजीविका पर आयोजित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला के उद्घाटन के अवसर पर कही। श्री यादव ने कहा कि बाघों के आवास क्षेत्रों को प्राकृतिक पूंजी के रूप में देखते हुए उनके संरक्षण के साथ स्थानीय लोगों की आजीविका और आय बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए। उन्होंने जैव अर्थव्यवस्था और इको टूरिज्म को सतत आजीविका का महत्वपूर्ण माध्यम बताया। कार्यशाला का आयोजन इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, एशियाई विकास बैंक और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने संयुक्त रूप से किया है। नेपाल में जारी बचाव और राहत कार्यों में भारत हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। आज नेपाल के लिए राहत और बचाव सामग्री लेकर 5वां भारतीय विमान रवाना हो गया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पर बताया कि विमान में 11 सदस्यीय बचाव दल और 5 टन से अधिक आवश्यक दवाएं हैं। इस बीच नेपाल में विनाशकारी बाढ़ में मरने वालों की संख्या 1100 से अधिक हो गई है। नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार अब तक 1114 शव बरामद हुए हैं। सबसे अधिक शव दक्षिणी चितवन जिले में बरामद किए गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि अब तक 95 मृतकों की पहचान के बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं। पशुपालन विभाग की ओर से सवाईमाधोपुर जिले में उष्ट रोग निदान और उपचार शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ राजीव गर्ग ने बताया कि आज रामगढ़, मुराड़ा, लहसोड़ा और बालेर में 1 दिवसीय शिविर लगाए गए हैं। शिविर में ऊंटों की जांच कर सर्रा रोग से बचाव के लिए उपचार किया जा रहा है। श्री गर्ग ने बताया कि पशुओं में लंपी स्किन डिजीज की रोकथाम के लिए जिला और उपखंड स्तर पर नियंत्रण कक्ष बनाए गए हैं। विभाग ने पशुपालकों से पशुओं के स्वास्थ्य संबंधी लक्षणों की जानकारी तत्काल इन नियंत्रण कक्षों को देने की अपील की है। औषधि नियंत्रण विभाग ने भिवाड़ी में बिना लाइसेंस दवा कारोबार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए करीब 4 करोड़ रुपए की दवाइयां जब्त की हैं। साथ ही बड़ी मात्रा में दवा निर्माण में इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल बरामद किया है। विभाग की संयुक्त टीम ने बिना लाइसेंस संचालित गोदाम से करीब 1500 कार्टन दवाइयां और पैकिंग सामग्री तथा उपकरण जब्त किए। विभाग ने संबंधित दवा कंपनियों के बारे में पंजाब, हरियाणा और हिमाचल हिमाचल प्रदेश के औषधि प्रशासन को सूचना दे दी है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।